नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत हुआ है। बजट उपरांत आयोजित वेबिनार सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति केवल चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये बजट का आधार और सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद की भारतीय परंपराएं विश्व स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर रही हैं।
हमारे योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ये चरण अगले महीने की 2 तारीख तक चलेगा। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। कांग्रेस के 3 सांसद मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि ये प्रस्ताव रखेंगे। यदि आज लोकसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो श्री ओम बिरला सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे और सदस्यों के साथ बैठेंगे। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता और पिछले वर्ष सितंबर में जेएनजी आंदोलन के प्रमुख चेहरे बालेन्द्र शाह का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। पार्टी को प्रतिनिधि सभा में प्रत्यक्ष चुनाव वाली 165 सीटों में से 122 सीटें मिली हैं और 3 सीटों पर वो आगे चल रही है। 35 वर्षीय बालेन्द्र शाह ने 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके और सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों से हराया है। इसराइल सेना ने बेरूत पर हमले में लेबनन कोर के 5 वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने का दावा किया है। इसराइली रक्षा बलों ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लेबनन कोर के वरिष्ठ कमांडर दाऊद अली जादे, माजिद हसैनी, खुफिया कोर के कमांडर अली रजा अजर और हसन अहमदलो हमले में मारे गए लोगों में शामिल थे। इसराइली रक्षा बलों ने एक अन्य पोस्ट में सुप्रीम लीडर के सैन्य कार्यालय के नए प्रमुख अबू अल कासिम बाबियान के भी मारे जाने का दावा किया है। तेल की कीमतें पिछले 3.5 वर्ष में पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई हैं। मध्य पूर्व में ईरान युद्ध के कारण तेल का उत्पादन और परिवहन प्रभावित हुआ है। वैश्विक तेल मूल्यों में उछाल के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की परमाणु क्षमताएं नष्ट होने के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमले के भय से होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग बंद है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान से तेल और गैस निर्यात का ये मुख्य मार्ग है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आज दिल्ली में विकसित भारत युवा संपर्क कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ करेगा। ये पहल मेरा युवा भारत के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने में युवाओं की सहभागिता को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी के 35 से अधिक महाविद्यालयों के 10,000 से अधिक विद्यार्थियों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना है। भारत ने 3री बार आईसीसी T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है। इसके साथ ही उसने लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतने का गौरव भी हासिल किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। हैदराबाद में FIH विश्व कप महिला हॉकी क्वालिफायर के पूल बी के 2रे मैच में आज भारत का सामना स्कॉटलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।